1977 में मैं पेरू में पूरे समय प्रचारक की तरह सेवा कर रहा था। मेरे साथी और मुझे सारे कुस्को जोन के प्रचारकों को मंचू पुचू नाम की कंधर जाने की स्वीकृति मिली। हमारे कंदर के भेंट के अंत में कुछ प्रधान प्रचारकों इनका ब्रिज जाना चाहते थे पहाड़ के भाग के मार्ग पर। तुरंत ही मैंने अपने हृदय में आत्मा को वहां नहीं जाने की सीमित को महसूस किया। मार्ग पहाड़ के कारण किनारे 2000 नीचे की ओर था। कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति के चलने की बराबर छोटा सा रास्ता था। मेरे साथी और मैंने उनको बतलाया कि हमें इनका ब्रिज नहीं जाना चाहिए। फिर भी प्रचारकों ने जोर दिया कि हमें जाना चाहिए। बहस बहुत ही ज़्यादा हुआ और आत्मा ने मुझे जो मार दिखलाया था से बावजूद मैंने उसको दबाव में गया और उनके बतलाया कि हम ब्रिज भेंट करेंगे परंतु अगर सिर्फ हम बहुत ही सावधान रहें तभी। हम मार्ग पर चले जिसमें मैं संगठनों के आखिरी में इनका ब्रिज की ओर बढ़ते थे और पहले सभी आहिस्ता चले जैसे तय हुआ था। फिर प्रचारकों ने बहुत ही तेज़ी से चले शुरू किया और दौड़े भी। उन्होंने मेरी धीरे चलने की गुजारिश को अनदेखा कर दिया। मैंने उनके पास बहुत के लिए आभारी महसूस किया उनको बतलाने के लिए ही कि हमें वापस जाना चाहिए। मैं उनसे बहुत ही पीछे था और मुझे बहुत ही तेज़ी दौड़ना पड़ा। जब मैं एक कोने पर पहुंचा, एक स्थान पर वहां एक प्रचारक खड़ा हुआ था। मैंने उसे पूछा कि वो क्यों वहां पर खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया कि उसे वही उसी स्थान पर होना चाहिए क्योंकि वो महसूस कर रहा था। मैंने उनके पास आगे जाकर साथ होने की चुनाव को महसूस किया तो उसने मेरा मदद किया और मुझे आगे जाने में और मैंने मार्ग पर कुछ नीचे जा पाया। मैंने देखा कि मैदान पूरा हुआ भर रहा था। मैंने अपना धैर्य पर मैदान पर रखा, वहाँ कोई मैदान नहीं था। फिर मैं गिरने वाला था। फिर 2000 फीट नीचे उरंबी नदी जो इनकास के सेक्रेड वैली को होकर गुजर रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी शक्ति कम हो चुकी थी और कुछ ही पल मैं और देर तक मैं नहीं पकड़ सकता था। उस पल मैंने तुरंत ही प्रार्थना किया। वह बहुत ही छोटा सा प्रार्थना था। मैंने अपना मुंह खोला और कहा, पिता मेरा मदद करो। दयालु उतनी मजबूत नहीं थी कि मेरे शरीर को वहाँ रख सके। मुझे पता था कि मैं नहीं बचूंगा। पल जहाँ मैं गिरने वाला था, मैंने एक स्थिर हाथों के मेरे बाह पकड़े महसूस किया और मुझे ऊपर खींचा। उस मदद का साथ मैंने वापस मार्ग आने के लिए कोशिश किया। वह प्रचारक जो पीछे रुक गया था उसने मुझे बचाया, परंतु सच में हमारे स्वर्ग पिता ने मुझे बचाया था। उसने मुझे मेरी आवाज़ सुनी। मैंने आत्मा की आवाज़ तीन बार पहले भी सुना था कि इनका ब्रिज पर मत जाओ, परंतु मैंने आवाज़ को नहीं माना। मैं डर गया था, मैं पीला पड़ गया था और मेरा पता नहीं था कि क्या कहे। फिर मुझे याद आया कि प्रचारकों हमसे आगे थे और फिर हम पास गए और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब हम वापस मंचू पिचू जा रहे थे, बहुत ही सावधान से थे और शांत थे। वापस जाते समय शांति से मेरे मन में सुझाव आया कि उसने मेरी आवाज़ को सुना था और परंतु मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे हृदय बहुत ही पीड़ा था कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसी पल उसके दया बहुत ही आभार महसूस किया। उसने मुझ पर अपना न्याय किया, परंतु उसके महान दया के नाम था कारण उसने मेरी जान बचाया। दिन के अंत में जब मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना के समय था, मैंने हृदय से प्रार्थना दिया, दया के पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, मैंने सच्चे हृदय के साथ मसीह में विश्वास करते हुए पूछा। उसी दिन सुबह को मैंने प्रार्थना किया और जब प्रार्थना खत्म होने वाला था, मैंने अपने हृदय से उसे प्रार्थना किया। मैंने अपने जीवन के उस पल को याद किया। मैंने कई स्थितियों में पाया कि हमारे स्वर्ग के पिता मेरे लिए बहुत ही धन्यवान थे, दयावान थे। उसने मुझे उस दिन पेरू कुस्को में शिक्षण दिया। उन्होंने एक महान शिक्षण था, सच्चे हृदय के साथ वास्तविक उस्ते से मसीह में विश्वास हुए पूछना चाहिए। एक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे पूछा, प्रभु हमें भी तू प्रार्थना करना सिखला। फिर उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया और आज वह तुम्हें और मुझे प्रार्थना करना सिखलाना रहा है। जब हम उसे अपने मन में गेतसेमनी में प्रार्थना करते और कहते हुए देखते हैं तो भी मेरा नहीं परंतु तेरा इच्छा पूरा होगा। तब तुम प्रार्थना करो, क्या तुम सही सच्चे मन से चाहते हो मेरा नहीं परंतु तेरा इच्छा पूरा हो। पॉल ने बताया कि किस तरह से यीशु मसीह ने प्रार्थना किया देह के रहने के दिनों में, खासकर गेतसेमनी में। उसने शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाओं और विनती से। जब तुम प्रार्थना करते हो, क्या तुम सच्चे हृदय से करते हो या सिर्फ बोल रहे हो? क्या तुम अच्छे हृदय से प्रार्थना करते हो? यीशु ने शक्तिशाली प्रार्थना किया और अपने पिता के साथ बातें किया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। जब तुम प्रार्थना करते हो, क्या आप महसूस करते हो कि आकाश खुल गया है या ऐसा स्वर के साथ तुमने कब आखिरी बार महसूस किया था? यीशु ने अपने आप को तैयार किया था अपने पिता को जरूर फैसले को प्रार्थना लेने के लिए और उन दिनों में वह पहाड़ और प्रार्थना कर रहे को निकले और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी बात बताई। तब दिन हुआ और फिर अपने चेलों को बुलाकर 12 को चुना। क्या तुम अपने आप को जरूरी फैसलों के लिए तैयार करते हो स्वर्ग पिता को प्रार्थना में? क्या तुम अपने आप को उस प्रार्थना के लिए तैयार करते हो? जब यीशु मसीह अमेरिका देश में आए, उसने लोगों को प्रार्थना करने में सिखलाया और यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करते रहो, और उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हमें हमेशा प्रार्थना करो। यीशु को पता है कि हमारे स्वर्ग के पिता सुनता है और वह देता है जो उनका इच्छा है, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी हम नहीं चाहते। क्यों? उसी पर हम कहते हैं कि स्वर्ग पिता वो हमारे प्रार्थना को सुनता है और जरूरतों को जानता है, और तब हम उसके आंखें और उसके कान तुम से जुड़ जाता है। वह तुम्हारे मन को पढ़ता है और वह तुम्हारे हृदय को महसूस करता है। तुम उसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। अब आश्चर्य चीज यह है कि वह तुम्हें प्रेम और दया के आंखों से देखता है। प्रेम और दया जो हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, परंतु उसके पास प्रेम और दया रहता है जिस पर तुम कहते हो स्वर्ग पिता। प्रार्थना का पल बहुत ही पवित्र होता है। परमेश्वर उस प्रकार का आदमी नहीं है जो उस कह सकता है, मैं अभी तुम्हें सुना नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ उस वक्त मेरे पास आते हो जब तुम मुश्किल में हो रहते हो। सिर्फ मनुष्य ये कहता है, वो ऐसा नहीं कहता, अरे तुम जान नहीं सकते कि मन में क्या वास्तव हुआ। यह मेरा आशा है और प्रार्थना कि हम उस तरह प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आमीन। तो कैसे मतलब